राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 30 जून 1993 को प्रातः लगभग 8:30 बजे भीनासर में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 आज बड़ा आनंद है। हमारा ये सातवां मास से यज्ञ आरंभ होता है। यहां आने वाले भाई बहनों को बड़ी सावधानी से अपने व्रत का पालन करना चाहिए। रोजाना सत्संग में आना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, भगवान को याद रखना, नाम का जप करना, नियम तो हर समय विचार मौन रखना, मानो कम बोलना। मौन कई तरह की होती है, उसमें मौन में कम बोलने का तात्पर्य है कि भजन बनता रहे। अधिक बोले तो नाम जप के लिए समय नहीं मिलेगा, इस वास्ते हर समय भगवान नाम का जप करते रहें। हाथ काम मुख राम है, हृदय साथी प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की यही उत्तम रीत। हाथों से काम धंधा करते रहें और मुख से नाम का जप करते रहें, हृदय में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम हो। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। ये बात बहुत एक मार्मिक है। मनुष्य के भूल होती है को यहाँ का ही मान लेता है, यहाँ के कुटुंब को अपना कुटुंब, यहाँ के घर को अपना घर, यहाँ के रहने को अपना रहना मान लेता है। प्रत्यक्ष बात यह है कि यहाँ जन्म करके आते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, ये बात सबके सामने प्रत्यक्ष है, इसमें कोई संदेह नहीं है, सबके अनुभव की बात है। फिर भी यहाँ इतनी भूल होती है, वो जाने के दिन को याद नहीं रखते। अगर ये याद रखे तो निहाल हो जाए। थोड़ा रहना है थोड़ा, जैसे दिन भर हम काम करते हैं, सत्संग का समय थोड़ा मिलता है, ऐसे ही थोड़ा सी लाख दूनी में भटकते हुए जीवों को मानव जन्म थोड़ा मिलता है। थोड़ा मिलने पर भी इसे बहुत बड़ा लाभ लिया जा सकता है। स्वर्ग है, नरक है, 84 लाख जोनी है, सब भोगने पर भी मुक्ति नहीं होती, इस मानव शरीर से मुक्ति हो सकती है। इस वास्ते इस मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा है। सब साथ कहते हैं, संत कहते हैं, दुर्लभो मानुषो देह, ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है। और बुद्ध होने पर भी प्राणिनाम क्षण भंग हो रहा, किस क्षण में यह चला जाए इसका कुछ भरोसा नहीं है, पग मारते मारते लुप्त हो जाता है। अपने आते हैं जाते हैं और यहां बैठते हैं और घर में काम करते हैं, इनमें समय जाने का कब आ जाए कुछ पता नहीं है, अचानक जाना पड़ेगा अचानक। रास्ते में चलते चलते समाप्त हो जाते हैं, काम करते करते समाप्त हो जाते हैं। ऐसी बात सुनी जाती है कि भोजन करते करते ग्रास यूं रहा ऐसे लुट जाते हैं, बात करते करते खत्म हो जाते हैं, थोड़ा सा कहते जी घबराता है सुबह थोड़ी देर में खत्म। ऐसे हम तरह तरह की घटनाएं सुनते हैं तो भी हम चेतते नहीं, आश्चर्य की बात है। कसको हम जाने ठीक तरह से, तो सज्जनों आज से ही बड़ी सावधानी के साथ हमें भजन स्मरण करना है। यह सत्संग क्या है, ये एक पाठशाला है, पाठशाला में पढ़ाई होती है और वो पढ़ाई उम्र भर काम आती है। ऐसे ये सत्संग है उम्र भर काम आवे ऐसा संशय कर लेना चाहिए, ऐसा विद्या ऐसी सीख ले, ऐसा अभ्यास कर ले, ऐसा स्वभाव बना लें जिसमें भगवान का भजन करते रहे। मनुष्य के लिए दो बात खास है, एक भगवान का भजन करना और एक दूसरों को सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, सेवा करना। संसार के साथ सेवा करने का स्वभाव रखे, आदत बनावे, अपनी प्रकृति बनावे, लेने के लिए नहीं। तो सभी लेना चाहते हैं तो उसमें पतन हो, देना चाहते तो उद्धार होता है। केवल नियत अपनी बना लेनी है। रामायण में राम जी का जन्म हुआ तो कहते सर्वस्व दान दीन सब का हो, जो पावा रखा नहीं था हो। सब ने सर्वस्व दान दिया, जो अपने पास था सबका सब दिया, पर लेने वाले ने रखा ही नहीं तो कहाँ गया। देने लगे वो देते हैं वो देते हैं वो देते हैं, तो देने देने का बड़ा उत्सव हुआ, चीज है ज्यों की ज्यों रही, अपने पास देते थी वैसी रह गई, क्योंकि दूसरों को दे गया उसको दे दिया। तो देते देते चीज बढ़ती है, लेते लेते चीज घटती है, प्रत्यक्ष बात है। प्रसाद देने लगे तो थोड़ा थोड़ा सबको मिल जाए, लेने लगे तो खत्म हो जाए। एक जगह की बात हमने सुनी, कोई बारात आई थी तो बीच में स्टेशन पर उनके भोजन का प्रबंध किया गया। कल्पना करो कि 100 आदमियों की रसोई बनी, अब वे लेने वाले मैं भूखा न रह जाऊं, एक एक दो दो पूरी अलग ले ली, अधिक ले ली, 5-7 आदमियों की वो भोजन कम रह गया, और वे दूसरा भूखा न रह जाए इस बात से एक एक पूरी कम ले लें, 10-15 आदमियों का भोजन और बच जाए। ये विचार करो, सीधी सरल बात है, लेने से चीज घटती है, देने से चीज बढ़ती है। और भगवान का भजन लेने का है, सेवा करने की देने की है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हृदय में भाव रहे कि सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो गया है, सबके घरों में आनंद उत्सव प्रसन्नता आनंद उत्सव बना ही रहे, किसी को कभी भी दुख भोगना न पड़े, ऐसा जब भाव रहता है तो सभी सुखी रहते हैं। अगर ये विचार करे कि मेरे को सुख होना चाहिए, दूसरा चाहे जाए जन्मों में चुल्ले में जाए, परवाह नहीं। ऐसे अगर सब करने लगेंगे तो स्वादियों में निदान में वोट आएगा दुख का, और मैं दुखी हूँ सब सुखी हो जाए, निदान में बार वोट आएगा सुख का। तो संगे सकते कलो योगी, भावना के सब सुखी रहे, सब सुखी रहे, सेवा मैं करूं कष्ट मैं उठाऊ, परंतु हमारे सब सुखी रहे, ऐसा आज से ही अपने विचार करें, घरों में ऐसा ही व्यवहार करें, सबको सुख पहुंचाने का ही भाव रखें, चेष्टा करें, तो कितनी बढ़िया बात होगी, कितना काम अच्छा होगा। सत्संग करने की बात हमने सुनी है, गांवों में जहाँ सत्संग हुआ तो लोग कहने लगे कि हमारे गांव की लड़ाई बंद हो गई, पहले लड़ाई होती थी अब प्रेम रहता है, लड़ाई दो चीजों से होती, मैं ले चीज वस्तु तो मैं लू, काम धंधा तुम करो तो लड़ाई होती है, चीज वस्तु आप लो और काम मैं करूं तो प्रेम हो जाता है। अरे वस्तुओं की कमी जाती है नहीं, वस्तुएं तो अधिक आती है, देने देने से चीज बढ़ जाती है और लेने से घट जाती है, तो सबका जीवन बड़ा सुखमय होता है। ये केवल युक्ति है, घाटा नहीं लगता इसमें। यदस मदी यम नहीं तत् परेशान, जो हमारी वस्तु है वो दूसरों की हो नहीं सकती। भागवत में आया है सुखम ऐन्द्रे गम राजन स्वर्गीय नरक एवं प्राणी नाम तद्यथा दुखम तस्मान नेत्य तत्बोध। कहते हैं कि प्राणियों को जो सुख दुख मिलता है वो सुख स्वर्ग में भी मिलता है और नरक में भी मिलता है। कितने कैसे कि जैसे दुख मिलता है तो दुख कोई कोई चाहना नहीं करता, दुख के लिए कोई उद्योग नहीं करता, फिर भी दुख आता है ना, ऐसे आने वाला सुख भी आएगा ही, इसकी गर्व करने की जरूरत नहीं है, इसे मांगने की आवश्यकता नहीं है। यदस्मदीयम नहीं तो परेशान, हमारी वस्तु है वो दूसरों की नहीं है, वो हमारे को मिलेगी अवश्य मिलेगी, क्योंकि हमारी है वो दूसरा कैसे लेगा। हमारे को आने वाला बुखार क्या दूसरों को आएगा, वो तो हमें ही आएगा, तो बुखार हमें आएगा तो स्वस्थता हमारी दूसरों को आएगी, वो ही हमारे को आएगी। तो सुख जैसे चाहने पर भी नहीं मिलता, दुख बिना चाहे मिलता है, तो बिना चाहे सुख भी मिलता है। हमने संतों की बातें सुनी है, वे सुख आराम तेज वस्तु अपनी नहीं चाहते, उनके पास बिना मांगे अच्छी अच्छी वस्तु आप से आप आती है। देने वालों का मन करता है कि इनकी सेवा में कुछ हमारा लग जाए। रुपये कमाने जाते हैं तो रुपये पैदा हो जाते हैं, तब अपने जीवन को सफल मानते हैं। ऐसे सेवा करने वाले अपनी वस्तु दूसरों के काम आ जाए उसमें वे अपनी सफल मानते हैं, वस्तुओं के आने को सफल मानते हैं। ऐसे सज्जन पुरुष दूसरों की सेवा में अपने को सफल मानते हैं, पैसे आने से सफलता होती है, वैसे ही अच्छे पुरुषों को देने में अगर सदुपयोग हो जाए वस्तु का तो वे सफलता मानते हैं। कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है। लोभ होता है तो लेने में आनंद ठीक मालूम होता है, और त्याग होता है तो देने में अच्छा मालूम होता है। ये दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर, तुलसी पंचन के प्रिय सर्वर घटत नीर। देने देने से वस्तु घटती नहीं है, दाने बढ़ते रहते बढ़ती है, दिखता नहीं है ऐसा पर होता ऐसा है। दान दिए धन ना घटे, धन घटता नहीं है, जो खर्च करता है उसके पास आता है। मारवाड़ी एक लौकिक कहावत है कि खसरो भाग मोटो है, जो दूसरों को देता अच्छा खर्च करता है उसका भाग बड़ा होता है, उसके वस्तु चीज आती है। सदुपयोग करने वाले के पास वस्तु आती है, दुरुपयोग करने वाले वस्तु से वस्तु नष्ट हो जाती है, चली जाती है। तो भगवान सहायता करते हैं, क्यों कि भगवान देखते हैं कि इसकी थोड़ी शक्ति है, थोड़ा सा द्रव्य है, इससे भी ये सबका हित ही करना चाहता है, तो मेरे पास वस्तुओं की शक्तियों की कोई कमी नहीं है, तो मैंने भी चाहिए मेरे को भी मैं भी सबकी सेवा करूं। अब सबकी सेवा न करूं तो कम से कम सेवा करने वालों की तो सेवा करूं, तो वो सेवा करने वालों की सेवा करते हैं भी। तो भगवान सहायता करते हैं, जिसकी नीयत अच्छी है दूसरों को सुख पहुंचाने की है तो भगवान उनको सुख पहुंचाते हैं, आराम पहुंचाते हैं, और लेने वालों के पास में वस्तु भेजते हैं, क्योंकि वस्तुओं का सदुपयोग हो जाए। जो सदुपयोग करता है उसके पास वस्तुएं आप से आप आती है, शक्ति आती है, ताकत आती है, वस्तुएं आती है, समय मिलता है उनको, सेवा करने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है। जिनके सच्चा भाव सेवा का होता है उसकी बीमारी नहीं होती है, ये बीमारी मिट जाती है, ऐसी बातें कुछ कुछ देखने में आई है। सेवा के लिए जिसका शरीर है वो शरीर अच्छा रहता है सेवा करने वालों का, और जो मुफ्त में खाते हैं सेवा नहीं करते शरीर आलसी और बीमारी हो जाए, बीमार हो जाता है, क्यों काम करता नहीं तो रोग रोग बढ़ता है, और परिश्रम करता रहता अग्नि की दीप तो होती है, भोजन पचता है उसे सब ठीक रहता है। तो शरीर से सेवा करना और वस्तुओं से सेवा करना, शरीर से खट करके परिश्रम करके सेवा करना और वस्तुओं को देकर सेवा करना, जिसके पास कम हो उसको दो। भागवत में नारद जी महाराज ने युधिष्ठिर को कहा है, चारों वर्णों के और चारों आश्रमों के धर्मों का वर्णन किया है, स्त्रियों के धर्मों का वर्णन किया है, पीछे सन्यासी के धर्मों का वर्णन करते हुए बड़ी महिमा गाई है कि सन्यास है वो त्याग है, उसकी बड़ी महिमा है, त्यागा शांति रणंतम गीता कहती है। बहुत लोग ये बात याद आ गई, बहुत लोग कहते हैं कि शांति नहीं है, तो शांति लेना ही लेना चाहते हो इसमें अशांति होगी, और देना ही देना चाहो तो आपके शांति बढ़ेगी। त्यागा शांति अनंतरम गीता में कहा है, त्याग के अनंतर ही शांति होती है, जब त्याग किया तो शांति मिलेगी। त्यागा शांति अनंतरम, अंतर नहीं पड़ता, त्याग करते शांति आती है, सबकी सेवा करूं ऐसे भाव से मन में शांति आती है, और वस्तुएं भी मिलती है विशेषता से, ऐसे सेवक की कमी नहीं रहती। तो सेवा करने का भाव है, परिश्रम करके सेवा करें, वस्तुओं के द्वारा सेवा करें, तो वस्तुओं के द्वारा सेवा करने से वस्तुएं उनके पास आती है, और जो नहीं लेना चाहते हैं उनको लोग देना चाहते हैं, और लेना चाहते हैं उसको देना नहीं चाहते। आप इतने बैठे आपका अपना अनुभव है, अब रोटी भी उसको देना चाहते हैं जो लेना नहीं चाहते, भूखे रहने पर ही मांगते ही नहीं, मस्त रहते हैं बनाने में, तो आपके मन में आते ही इनको कुछ दे दें, कपड़ा नहीं है और मांगते ही नहीं, आवश्यकता दिखती है, तो उनकी आवश्यकता को लोग खोजते रहते हैं कि इनके कोई वस्तु की जरूरत हो तो हमको दें, पूछते रहते हैं कि क्या आवश्यकता है, मैं कौन सी सेवा करूं, क्या सेवा करूं, बहुत ऐसे काम पड़ता है, लोग लालायित रहते हैं, और कोई थोड़ा भी उपयोग हो जाए हमारी वस्तु का भी स्वीकार करते तो चित्त में बड़ी प्रसन्नता होती है, इन्होंने हमारी सेवा स्वीकार कर ली, कैसी आनंद की बात है। तो त्याग से शांति मिलती है और वस्तु में कम नहीं रहती है, बैन पड़ता है कि देने से चीज घट जाती है कि ना, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर, भगवान देते हैं तो फिर कमी क्या रहेगी, लोग सब देना चाहेंगे, जो लेना नहीं चाहते उसे सब लोग देना चाहते तो कमी कैसे रहेगी, एक पुरुष अपने लिए लेता है तो उसके लिए तो कमी रह सकती है, पर सब लोग देना चाहते उसकी कमी कैसे रहेगी। गीता माया है भोजते सुगम पापा ये पसंद थे आत्म का नाथ, अपने लिए ही भोजन पकाते खाते रहते हैं, वे पापी पाप का भक्षण करते हैं, पाप का ही भक्षण करते हैं जो अपने लिए पकाते हैं, अपने बीकानेर की तो एक रीत है ऐसी, मैंने तो सुनी है कि आज ठाकुर जी के क्या बनेगा, भीतर से माता बहना पूछती है कि पूछो भी आज ठाकुर जी के क्या बनेगा, तो वह भी सोचते हैं आज ठाकुर जी की अमुक चीज बननी चाहिए, ऋतु को सोच करके समझ करके कि ठाकुर जी के क्या भोग लेना चाहिए, इस ऋतु में भगवान के क्या भोग लगे, ऐसा सोच कर कहते हैं और भगवान के लिए भोजन बनाते हैं, अपने को मुफ्त में मिल जाता है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। सूरज भगवान को आप चंदन चढ़ाओ ऐसे तो आपके ऊपर चंदन चढ़ेगा, धूल और राग फेंके तो अपने ही कर्म में पड़ेगी, दूसरों को देने से लाभ होता है परंतु भाई बहन समझते कम है, जिनको यह चश्मा लग जाता है उनकी बात एक विचित्र है। हमारे एक माघ पंडित हुए, माघ लोग जानते नहीं, गांव में प्रसिद्ध है, पंडित आए कहीं माघ ही तो माघ ऐसा, वो माघ क्या थे पता नहीं, वो माघ ही पंडित थे, बोले काव्य बनाया शिशुपाल पर एक माघ काव्य है, तो उनकी बात सुनी है कि उसमें घर में रोटी की भी तंगी रहती थी, भोजन करने के लिए पूरा अन्न नहीं मिलता था, ये दशा थी उनकी, तो किसी ने राजा से कहा कि महाराज आपके राज्य में ऐसे बड़े धुरंधर विद्वान हैं और बड़े त्याग से रहते हैं, उनके तंगी रहती है वस्तुओं की, तो राजा ने बुलाए, बड़ा आदर किया, सिंहासन पर विराजमान किए, पूजा करी और बहुत सा धन दिया, बाहर निकले तो लोग लगे मांगने, तो जैसे घर से आए थे वैसे घर पर पहुंच गए, देते 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 बस वैसे पहुंच गए, देने का स्वभाव था उनका, बस पास में पहुंच गई। आज भी उनका हम नाम लेते हैं, क्यों, क्यों उनको उपकार की दृष्टि थी, सबका हेतु सबकी पूर्ति हो, संपूर्ण की पूर्ति क्या कर सकता है मनुष्य, अरे एक इच्छा की पूर्ति दुनिया सब मिलकर नहीं कर सकती, तो क्या एक व्यक्ति संसार मात्र के अभाव की पूर्ति कर सकता है, तो पूर्ति करने का आपके ऊपर इतना भार भी नहीं है, सत्य सारू दत्त बाटी है ना पोकत न राम, अपनी शक्ति के अनुसार उपाय करो, अपने सेवा करो, जितना अपने पास पदार्थ है, जितना पास शरीर में शक्ति है, जितना अपने पास समय है, जैसे आपके पास समझ है उसके अनुसार दूसरों के हित में तत्परता से रहो, तो सगुण की प्राप्ति के लिए ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति है भगवान कहते हुए मेरे वो प्राप्त होते हैं, और लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम विषय क्षीण कल्मषा, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं ऐसे ऋषि मेरे को प्राप्त होते हैं। ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म को निर्गुण निराकार तत्व को प्राप्त होते हैं। कब के सर्वभूत हित रहता प्राणी मात्र में हित रहते हैं, तो प्राणी मात्र के हित में रत रहने से सगुण भगवान की प्राप्ति कैसे होती है कि उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मैं देख ही जगत कासन कर ही विरोध। उमा जे राम चरण रत भगवान के चरणों में जिनकी प्रीति होती है, विगत काम मद क्रोध, काम क्रोध लोभ मोह मद आदि कोई में नहीं होता है। कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, भगवान का भजन करना चाहते हैं और भगवान के रूप में ही देखते हैं संसार को और संसार की सेवा को भगवान की सेवा मानते हैं। इस वास्ते भगवान की सेवा करने वाले संतों का सत्संग करने वाले वे सदा सबका हित करते हैं, हित से आते हैं, हितकारी प्रवृत्ति होती है। निज प्रभु में देख रहे जगत सब भगवान की है, जो कुछ दिखता है इसी आराम में सब जगह जाने करो प्रणाम जोड़ी जो पाने दोनों हाथ जोड़ के गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सीताराम 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 राम श्री राम सबको सीताराम सीताराम सोच के हाथ जोड़ कर नमस्कार करता हूँ। उनका काम क्रोध रोज रहते ही नहीं। एक बात याद आ गई, भागवत में आया है नरेश स्वेक्षणम मद भावम पुनसो भाव यथो चिरात स्पर्धा सोया तिरस्कारा साहंकारा वियंती। सब मनुष्य में भगवान की भावना करता रही, भगवान आए भगवान इस रूप से आए भगवान इस रूप से आए, तो न जाने भगवान भी इस रूप से आ जाए साक्षात भी। सब में भगवत बुद्धि करता है, सब जगह भगवान को देखता है, उसके अहंकार के सही दुर्गुण दुराचार सब मिट जाते हैं, ईर्ष्या मिट जाती है, निंदा मिट जाती है, गुणों में दोष दृष्टि मिट जाती है और तिरस्कार किसी का नहीं करते हुए सहंकाराभियंती अहंकार के सत नष्ट हो जाते हैं, देहाभिमान टूट जाता है। वेदांत की बहुत बहुत बातें करने पर भी कह देते देख मेरा नहीं है, ये वस्तु मेरी नहीं, इंद्रिया मेरी नहीं है, प्राण मेरा नहीं है, मन मेरा नहीं है, बुद्धि मेरी नहीं है, ये कहते कहते सीख जाते हैं परंतु अपनापन मिटता नहीं है और सेवा में लग जाए तो उनको सेवा में वस्तु और शरीर सब सेवा में ही है। सेवा में ही लग गया तो अपना रहा ही नहीं, अपनापना बड़ा सुख से मिलता है। गीता में सांख्य योग और कर्म योग की दोनों की बात बताई, पांचवें अध्याय में अर्जुन पूछते हैं कि इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, तो बताया तेजस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्य थे, कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है कि दूसरों के सुख देने से अपने सुख भोग की संग्रह की इच्छा मिटती है। दो ही चीज तो है, भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम तया पद्धति तथा व्यवसाय जातने का बुद्धि समाधो न विधीयते। संग्रह करने की सुख भोगने की जिसकी लालसा है वो कैसे दान दे सकता है, कैसे भजन में लग सकता है। वस्तु संग्रह की इच्छा है और सुख भोग तो सुख भोग को भोगना चाहता है, वस्तुओं की संग्रह लेना चाहता है, तो परमात्मा की प्राप्ति तो दूर रही। परमात्मा की प्राप्ति करना है ऐसी बुद्धि भी नहीं उनकी होती, विचार भी नहीं होता, वो संग्रह और भोग में लगा रहता है, हाय धन हाय धन हाय धन कमाने में और उसके द्वारा सुख भोगने में लगा रहता है। तो ये नीचे से नीचे लगे काम है, अपना सुख चाहता है, अपने भोग चाहता है, अपना धन चाहता है और उदार आदमी वे है जो सबको सुख देते। तो सर्वभूत हिते तथा प्राणी मात्र के हित में रहने से दूसरों के सुख से सुख होगा और दूसरों के दुख से दुख होगा, दूसरों की प्रसन्नता से दूसरों के सुख से हमारे को सुख मिल जाता है, आनंद मिल जाता है, फिर हमारे लिए भोग की आवश्यकता नहीं रहती। दूसरों के दुख से दुखी होते हैं तो उनके पास संग्रह की भी आशक्ति नहीं रहती। आया है जितना से ध्यानी है भाई, सबको सुख पहुंचाना है, सही बात हित करना है, ऐसा भाव रहता है तो संग्रह की रुचि भी नहीं रहती। जहाँ देना ही देना भाव होता है वहां लेने की भाव कैसा, वो लेता है तो ही देता है, देता है तो ही देता है, उनके देने की भाव ही होता है। जिसके लेने की इच्छा है वो देता है तो ही लेता है, लेता है तो ही लेता है, देता भी है लेने के लिए, लेता भी लेने के लिए, तो सबकी सब उसकी सबकी प्रवृत्ति खाऊ खाऊ में रहती है। इस वास्ते सत्संग से ये बात सीख रही है, घर में ये बर्ताव करना है कि सुख औरों को पहुंचाना है, चीजों औरों को देना है, अपने संग्रह की समिटने से, तो देने की इच्छा रहने से संग्रह करने की रुचि कम होती है, क्योंकि हमारे पास वो देने के लिए है, तो जितना है उतना ही देने का अधिकार है, अधिक मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। उनके लिए लेने की इच्छा करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको सेवा का भगवान मौका देते हैं, अवसर देते हैं सदुपयोग करने के लिए। तो सज्जनों अपना स्वभाव बनाओ, सुख भोग का नहीं, संग्रह करने का नहीं, सुख भोग का संग्रह करने की रुचि वाले परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। इस बात में संग्रह की इच्छा नहीं, उनके पास संग्रह हो जाए तो कोई फेंकना नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि अपने पास चीज रहने ही नहीं दे, ऐसा नहीं है, संग्रह रखना है, गृहस्थों का धर्म है, गृहस्थों को अपनी चीज आ जाए वो रखो, बहन बेटी के लिए रखो, भिक्षुओं के लिए रखो, बीमारों के लिए रखो, अपाहिज है, आशा अंग भंग है, अंगहीन है, कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए रखो, बालकों के लिए रखो, जापायत की रखो, जो काम नहीं कर सकते उनके लिए रखो, और देने के लिए जैसे अधिक मास आ रहा है तो अधिक मास में एक माताओं की रुचि होती है, 30-31 वस्तु अपने पास रखती है भाई 30 दिन में ये देना है, पहले से राकर चीज रख देते हैं। उन चीजों में से एक बच्चा गिलास भी लिखा ले आता है, लेना ये लेना नहीं है, ये देने के लिए है, अपने अभी अधिक मास में देना है, ये देने के लिए है। तो देने के लिए चीज होती है उसमें अपना सुख नहीं लेता हो, तो दूसरों के हित करने के लिए है, बहन बेटी के लिए है, कुटुंबियों के लिए है, लड़कियां बहानी है, लड़के बिहारने है, इस बात उनके लिए है, तो संग्रह करो, परंतु दीन दुखी को देते रहो। कि देते रहे संग्रह कैसे होगा, ये आपके बहम है, देते रहने से भी संग्रह हो जाता है। एक घटना बताऊं आपको, गोरखपुर में मैं उस समय वहां गोरखपुर में ही था, तो गोरखपुर जिले में अकाल पड़ा हुआ था, महंगी भी वस्तु मिलती नहीं थी। उसमें सेठ जी श्री जयदयाल जी ने कहा, भाई अपने जहाँ सस्ता अनाज मिलता है वहां से लाओ और इनका सस्ता दाम दो। 8-10 हजार आदमी रोजाना आते थे, अब इतनी भीड़ अधिक हो जाएगी, तो वे क्या किया उन्होंने, साहिबगंज में वहां दुकान रखी और गीता प्रेस जाओ वहां से पुर्जी लेकर आओ, एक पुर्जी एक सर्टिफिकेट, तो वहां पुर्जी एक छाप कर देते थे। वो लेने जाते दिन में जाने में आने में आदमी लग जाए तो कोई कचरे फंस करके मर न जाए, गिर जाएगा तो फिर जाएगा, ऐसे मर न जाए, इस वास्ते ये उपाय सोचा और ये किया। मैं वही था तो लोग आते पुर्जा लेने के जाते आते, उनको 1-2 रुपया 3 रुपया कितनी वस्तु दे देती, फिर आ जाओ फिर ले जाना, नहीं तो बात क्या हुई कि लोग ले जाते और उसका व्यापार करना शुरू कर देते, गरीबों को लोगों को मिलती नहीं, तो थोड़ी थोड़ी चीज देते थे, फिर आ जाओ फिर ले जाओ। उसमें भी धनी आदमियों ने जो घोड़ा रखते थे, तांगा रखते थे, उन छोरों को देते थे रुपया, पैसा 2 पैसा दे दिया उनको, जाओ भाई अपने ले आओ, वहाँ 2 रुपये को चढ़ा ले आओ, तो वे उस भीड़ में 2 रुपये चढ़ा ले आते, अपने घोड़ों को खिलाते। ऐसी बात हुई वहां। गोविंदा जी बोले क्या करें, आदमी काम करने वाले हो तो ऐसा विचार है कि गुवाहाटी से असम से इंडिया मंगावे और सस्ती देवे। इन धनी आदमियों की भूख बहुत बेचारों की है, स्वयं बगड़ता है दूसरों को सुख नहीं, वो भी धनाते हैं। तो ऐसे आदमी हो तो ऐसा करेंगे, बढ़िया बढ़िया कपड़े मंगावे, इंडिया मंगावे, जिनके इनको सस्ते में दी जाए तो कितने राजी होंगे बताए देगा। तो ये तृष्णा मिटती नहीं, धन से मिटती नहीं, धन से भूख नहीं मिटती है, धन से भूख बढ़ती है। जिन प्रतिलाभ लोभ अधिक आई, अधिक लोभ बढ़ता है। तो ऐसे उन्होंने किया तो अंत में क्या हुआ कि पूंजी बढ़ गई, जितने रुपये खर्च किए थे उनसे रुपये अधिक हो गए। कहते हमने तो सस्ता दिया, बहुत सस्ता, परंतु जहाँ मिलता है वहाँ सस्ता ज्यादा मिलता था, यहाँ अधिक सस्ता करें थे कि लोग ये भीड़ में फिस करके मर जाएंगे कहीं, इस बार इतना सस्ता नहीं किया, ठीक सस्ता किया। उस सस्ते करने में पूंजी बच गई। आप आश्चर्य कर तो कैसे हुआ, ये मरसव हुआ है ऐसा, देने का विचार होता है ना तो रुपये बढ़ गए। मेरे सामने वो बात आई, सेठ जी से पूछा कि सेठ जी हमारे तो रुपये बढ़ गए। तो सेठ जी अरे सावधान रहना, ये कलयुग की घूस है, कलयुग देता है ये नाम। तो संसार में तो नाम होता है गीता पर दे रहा है, और कलयुग घूस दे रहा है तुम्हारे भीतर भीतर, पैसे तुम्हारे बच रहे हैं। ये बड़ा खोटा पैसा है, इस पैसों को नहीं रखना यहाँ। तो मैं क्या करें कि यहाँ महंगा बिकता है वो तो लाओ और सस्ता दो, महंगा बिकता है लाओ सस्ता दो, इसमें पूंजी सब खर्च करो, पूंजी रखना नहीं है। कितनी विचित्र बात है, सबको सबको मिल जाए, चीजें मिल जाए, बड़ी आनंद की बात है। इसके लिए अपने खर्च करो, ये रखना नहीं, ये कलयुग की घूस है, बड़ी खराब चीज है, ये रखना नहीं है अपने। तो देने की नियत से वस्तु घटती नहीं है, घर में चीज बढ़ जाती है। घर के भाई भाई बहन दीदी जेठानी आदि अगर वे लेना शुरू कर दे, अपने पास अधिक पूंजी लेना शुरू कर दे तो घट जाएगा वो पूंजी, घट जाएगी मूल में। और सब नहीं भाई हमारे लेना नहीं, हमें तो केवल सेवा करना है, तो इतना द्रव्य बढ़ जाए लोगों में पता लगेगी न जाने इनके पास कितना धन है, ऐसा लोगों में प्रभाव पड़ता है। क्यों देते ही देते हैं, लेने का स्वभाव ही नहीं है, तो उनके ऊपर असर पड़ता है। और वहां पूंजी बढ़ती है घटती नहीं है, दरिद्रता आती नहीं है। और वो दरिद्रता आ जाए तो एक विलक्षण बात है, एक मन को जी बोझ लाते। एक भक्ति कथा हमने पढ़ी है, ब्राह्मण गांव में रहने वाले एक मन को जी बोधला एक सज्जन थे, खूब गाया बेचना थे, खेती खूब होती थी, अनाज खूब पैदा होता और शर्त कर सबका उपकार करते थे। ऐसे उपकार करते करते अकाल पड़ गया, बड़ी तंगी आ गई, गाय भैंस आदि बिक गई, बड़ी तंगी आ गई। तो उनका नियम था एकादशी के दिन पंढरपुर जाना और एकादशी का व्रत करना, ठाकुर जी के दर्शन करना, द्वादशी के रोज ब्राह्मणों को भोजन देकर फिर अपना भोजन पाते थे। वो नियम उन्होंने सही रखा, अब कहाँ से ब्राह्मण भोजन करे, अपने भी रोटी तंगी से मिलने लगी। तो वो जाते पंढरपुर तो बीच में रास्ते से सूखी सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर लेते अपने, जाते जितना दबारा ले गए, वहाँ वो दे करके उनके पैसे मिलते, उन पैसों से वस्तु खरीद कर द्वादशी के रोज एक दो आदमी ब्राह्मण को भोजन कराकर भोजन करते थे। ऐसा नियम उनका चला, परंतु उन्होंने अपना ब्राह्मण भोजन बंद नहीं किया, जितना है उस नहीं करते, अपना अधिक है ही नहीं, तो कहाँ से पैसा लाए, कहाँ से लकड़ी चुनकर लाकर बिक्री करके भोजन कराते थे। तो ऐसा भोजन करे देख करके भगवान का भी मन चला, पवित्र से पवित्र भोजन होता है, पवित्र वस्तु होती है, तो संत महात्मा भगवान की भी रुचि होती है, चलो भैया भोजन करेंगे। तो एक वृद्ध ब्राह्मण बने। बूढ़े ब्राह्मण आए मनको जी, आप ब्राह्मणों को आज द्वादशी है, बारिश है, आज तुम ब्राह्मण को भोजन देते हो? हाँ महाराज, आप बताओ। बड़ी अच्छी बात है, हम तो ढूंढते ही कोई मिल जाए ब्राह्मण, तुम्हें आ गए साहब। अब वो आ गए, तैयारी हुई, अब भोजन वाला उस बेचारे कंडे लकड़ियां खोद कर ले आए और आटा दाल और जितना लिया था उस बना दिए। लो महाराज बनाओ, पाओ आप बना लोगे, हम भी पा लेंगे, आप भी पा लो। ऐसे तैयारी की इतनी ब्राह्मणी आ गई, बूढ़ी बूढ़ी कोई माता जगत माता लक्ष्मी जी स्वयं पधार गई। वाह, यजमान का भोजन आप अकेले ही करोगे, हमारे को भोजन नहीं दोगे? नहीं क्यों है, क्यों बोध का बोधला जी? तो माता जी बिरा दो, आप भी भोजन पाओ, आप बनाओ, तैसे भोजन मैं बनाती हूँ, अपने पाएंगे साथ में भोजन बनाया सब। तो लक्ष्मी जी माता जी ने भोजन बनाया। अब भोजन बना तैयार हुआ तो आओ बोधला तुम पाओ। बोधला जी बोले महाराज आप पा लो, इसमें जो बच जाएगा हम भी प्रसाद ले लेंगे। नहीं नहीं, हम साथ में भोजन करेंगे। बोधला जी ने देखा कि हमारे तो आटा थोड़ा सा गए, अब तीनों कैसे पाएंगे, हम तो अपने लायक विचार भी ठाकुर जी के भोग लगा दे पा दे बहुत थोड़ा है। कि नहीं नहीं, हम साथ ही बढ़ेंगे, ज्यादा आ गए। अच्छा महाराज, अब माता जी परोसने लगी सा बूढ़ी ब्राह्मणी, वो परोसने लगो महाराज को भी पूछा, बोध दादी को पूछा कि माता जी आप हमारे हैं, हमारे है, हमारे सब है, बहुत है। महाराज तृप्ति भोजन भोजन कर लिया, फिर माता जी ने भी भोजन कर लिया, फिर भी भोजन बच गया। आश्चर्य आ गया, महाराज बोधला जी देखते हैं क्या बात है, इतना थोड़ा सा भोजन है, जब सबने भोजन कर लिया और फिर तो बोधला जी ये बच गया, आप औरों को भोजन करा, अच्छी बात है महाराज। ऐसे बोधला जी राजी बहुत हुए, बड़े प्रसन्न हुए, कैसी बढ़िया बात है, ब्राह्मण ब्राह्मण दोनों को आज भोजन करा दिया। सेंदोड़े ब्राह्मण को भोजन कराना बड़ी बढ़िया बात है, ऐसा कर बड़े खुश हुए। तो भगवान प्रकट हो गए और कहा कि बोधला तुम्हारा अन्न हमें प्यारा बहुत लगता है, ऐसे अन्न के हम भूखे रहते हैं, ऐसा भोजन हर एक जगह मिलता नहीं, लोग भोग लगाते हैं मन, ऐसा पवित्र भोजन, इतना शुद्ध भोजन हर जगह मिलता नहीं, आज हम तृप्त हो गए। तो बोधला जी बोले कि महाराज आज यहाँ द्वादशी के दिन पंढरपुर में हजारों लाखों आदमी इकट्ठे होते हैं और बड़े बड़े धनी आदमी ब्राह्मण भोजन करते हैं और बड़ी बड़ी मिठाइयाँ बनती है, वहाँ भोजन होता है ब्राह्मणों का, हमारे पास क्या है महाराज? हमें दाल बाटी, दाल बना ली, बाटी बना ली, उन्हें पा लिया। कहते बोधला जी हमारे को भोजन नहीं मिलता है, महाराज आपको नहीं मिले ऐसे कैसे हो सकता है, को तो दिखा है। एक धनी आदमी ने खीर मालपुआ और खूब बनाया अच्छी तरह से और ब्राह्मण को भोजन कराने को बैठाए, तो ब्राह्मणों को उन्हें चिट्ठी दे दी, पुर्जा दे दिया बहुत से ब्राह्मणों को, तो आप लोग आवे भोजन करें। अब बहुत ब्राह्मणों को दिया, उन ब्राह्मण कौन देता था महाराज भगवान को, तो ये गए जाकर के भोजन करेंगे। भाई महाराज आपकी चिट्ठी है, पूजा है आपके पास? कहते चिट्ठी हमारे पास कुछ नहीं है, हमें तो भोजन पाना है मन हमारा। कहते नहीं नहीं ऐसे भोजन नहीं पा सकते आप, ऐसे भोजन पाते हो कहा तो पूर्व गए, बस इतनी रसोई बनाई है, जितने पूर्जे बांट रहे उतना उतना हम भोजन कराएंगे, ऐसे आगे बैठे तो कोई पार हो बता। कि नहीं तो हम तो करेंगे सब भोजन। बोधला जी देखते घर घड़े, वो कहते हम जाएंगे, वो महाराज जाकर बैठ गए अपने अपनी भाषाओं के दीवाने ही जा बैठ गया भोजन करने को। बैठ गया तो सेठ को कहा साहब एक ब्राह्मण आया है, उसे पूर्जा तो है नहीं पास में, वो तो कहते मैं भोजन करूंगा। ब्राह्मण देवता आए, महाराज आपको पूर्जा दिया है, आपको निमंत्रण दिया है। तो भाई निमंत्रण क्या है, भोजन करेंगे हम तो, भोजन करना है हमें, निमंत्रण की क्या जरूरत है, हमें तो भोजन करना है, भूख लगी है। क्या महाराज भोजन ऐसा नहीं मिलता, आप ऐसे पधार जाओ नहीं तो बड़ी मुश्किल होगी। मुश्किल क्या है, भोजन करेंगे हम, कि करे वो कैसे, जबरदस्ती करोगे आप, हम नहीं करने देंगे, नौकरों बुरा हो रहा है इसको बाहर निकालो। ये जबरदस्ती करता है ब्राह्मण, कैसा करता है महाराज, उठा कर निकालते हैं। बाहर बोधला जी खड़े थे कि देखो बोधला जी हमारे कहाँ देते, हमारे को भोजन नहीं देते, हमारे को तुम्हारे वहाँ ही दाल बाटी मिलती है, बढ़िया भोजन हमें मिलता ही नहीं, बड़ा दिखा दे बड़ा दिखा है, ऐसी अंदर आई जोर से आधी और में सब तहस नहस हो गया। बोधला जी देखा पड़ा हमारा भोजन, अरे एक ब्राह्मण को भोजन कैसे देते हैं ऐसे, तुम्हारे पास पूजा नहीं है, तुम्हारे पास निमंत्रण नहीं है, बिना निमंत्रण दे रहे थे, इतने मेले में लाखों आदमी जहाँ इकट्ठे होते हैं उनको कितने किन को भोजन देंगे हम, स्पेशनेस हो गया। तो ये देने वाले होते हैं उनके पास गरीबी होने पर हम कहाँ दें कैसे दें, हमारी बहनों माताओं के मन में आती है कि हमारे पास धन हो तो हम खूब दें अच्छी तरह से दें, देवी योग से धन हो जाए तो कंजूस बन जाती, फिर नहीं रहती, मन में पहले आती है। पुरुषों को ऐसे मैंने देखा है, हमारे एक सज्जन कलकत्ता में जब रहता था तो उनका बड़ा सेवा भाव था, वो दलाली करते थे, अपना कुटुंब का पालन करते थे, तो वे कहते थे कि हमें तो दलाली करनी पड़ती है क्योंकि कुटुंब का पालन करना है, ये धन है, धनी आदमी है, इनको तो समय मिलता है, अगर हमारे मिल जाए तो हम तो सत्संग ही करें एकदम, फिर भी सत्संग करते छोड़ते नहीं थे, सत्संग लिखते भी थे, वंशीधर जी केवड़िया नाम था उनका। तो इसलिए वो कहते थे मरा देव योग से उनके पास धन हो गया, अब धन हो गया तो सत्संग आना कम हो गया। हमने पूछा महाराज क्या बात है कि महाराज वक्त नहीं मिलता है, इतना काम धंधा रहता है समय नहीं मिलता, अब जो धन बढ़ेगा काम धंधा बढ़ेगा दुकानें बढ़ेगी उसमें काम धंधा ज्यादा रहेगा, तो अब उतना समय तो नहीं कर सकते। तो ये मैंने देखा है तमाशा लोगों के मन में होता है कि हमारे पास धन हो तो हम करेंगे, ऐसा कभी मत देखो, है जिससे आप करो, जितना आपके पास है आपके लागू ज्यादा नहीं होता, माल पर तिगात होती है, इनकम पर टैक्स होता है, इनकम ही नहीं तो टैक्स किस बात का लगेगा, माल ही नहीं तो तिगात किस बात की लगेगी, तो आपका थोड़ा दिया हुआ भी बहुत ज्यादा पुण्य हो जाएगा, अधिक पुण्य हो जाएगा, क्योंकि सत्य सारू दत्तमांड ये है शक्ति के अनुसार देना चाहिए, तो शक्ति के अनुसार गरीब दे तो सकता है उतना धनी नहीं दे सकता। भगवान के यहाँ वस्तु और रुपयों का महत्व नहीं है, वहाँ भाव का महत्व है, भाव का भावग्राही जनार्दना, भगवान भगत का भाव देखते हैं, वो भाव को देख कर राजी होते हैं, वस्तु अधिक होने से नहीं, अधिक वस्तु होने से वो दान कम होता है, वस्तु कम होने से दान ज्यादा होता है। आपको आश्चर्य कैसे होगा, मैं कई बार कही है कि एक आदमी के पास 5 ही रुपये, बड़ा गरीब आदमी है, कमाता है खाता है, अगर गऊओं का काम पड़े तो 1 रुपया वो दे देता है, 1 रुपया तो मैं दे दूंगा, अधिक तो मेरे पास है, 1 रुपया दे देते हैं, 100 हो तो उसको 20 देना पड़े और 1000 हो तो, और कहीं 1,00,000 रुपये हो जाए पास में तो 20,000 देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, 100 वाले की 20 रुपया देना मुश्किल, 1,00,000 वाले को 20,000 देना पड़े तब 1 रुपये के बराबर होगा, और फिर भी 1 रुपये के बराबर नहीं होता, क्यों नहीं होता है? कि 1-5 में 1 खर्च करने पर भी अपने पास कुछ तंगी आएगी, भोजन फसल आदि के बीच में कमी आएगी, और 100 वाले के 20 रुपये दे दे तो 80 रुपया पीछे कमी थोड़ी आएगी, और 1,00,000 रुपया 20,000 दे रहे तो 80,000 बाकी रहेगा तो कमी थोड़ी आवेगी, जैसे 5 रुपये वाले के तंगी आवे ऐसी तंगी अगर धनी आदमी भोगे तो उसके बरोबर होगा, वो 5 रुपया 5% 1 होने से नहीं होगा, वो ये बात है। इस वास्ते धनी का थोड़ा भी दिया हुआ बहुत ज्यादा होता है, शक्ति उसी कम है ना, अपने देखो बालक छोटा अगर बोझा ज्यादा ले आता है तो अरे बड़ा बोझा ले लिया इसने, और पहलवान लिया हुआ तो कोई बात नहीं, ये क्या है इसके समय क्या बोझा है, बस शक्ति देखो इनकी शक्ति थोड़ी होती है, एक जगह बल की परीक्षा हो रही थी, बात हो रही है सबसे बलवान कौन है, तो भैंसा होता कि नहीं हाथी होता है, सबसे बलवान हाथी होता है, एक सज्जन बोले नहीं कीड़ी बलवान होती है, कैसी कैसी बात करते, कीड़ी क्या विचार होती, फूंकते तो उड़ जाओ तो खुद ही, कहते कीड़ी बलवान होती है, कैसे कीड़ी एक गेहूं अथवा एक जौ का दाना उसको पकड़ करके खींच कर ले जाती है, और हाथी पर एक जौ में 3, 4, 5, 6 कीड़ियां बन गया, ऐसे 5 से हाथी का बोझ एक पर हाथी बैठ तो हाथ घबरा जाएगा, गिर जाएगा, कहीं मुश्किल हो जाए उठाना। शक्ति देखो, शक्ति छोटी सी चींटी कितना बड़ा दाना लेकर के चली जाती है, तो इतने हाथी का उतना बल है तो 5-7 हाथियों को उठाकर वो भी चले नहीं उठा सकते। इस बात दिखने में आपको मामूली दिखता है, भगवान के यहाँ पैसों की वो गणना नहीं है, कितना पैसा हो तो दानी होता है, उसका बड़ा दान हो गया, उसने पैसा ज्यादा खर्च कर दिया, ज्यादा खर्च कर दिया, वो कम खर्च करने वाले से भी कम रहता है, ज्यादा नहीं होता। शक्ति मापुर कौन ही है देते, उनकी वाह वाह होती है, भगवान के ऊपर असर पड़ता है, इतनी कम शक्ति होते हुए भी ये इतना दान करता है, हित करता है, सेवा करता है, शरीर में बल नहीं है तो भी हित करता है, तो ऐसा इनका भाव होता है, भगवान राधी होते हैं। तो इस वास्ते धनों को ये इच्छा नहीं करनी चाहिए कि धन हो जाए तो हम ही उपकार करें, पर धर्मार्थम यस्य वित्तेह वरम तस्य निरीहता पक्षार्णादि पंकजस्य दूरादस्पर्शनम भरम। धर्मार्थम यस्य वित्तेह, जिसके धन कमाने की चेष्टा होती है धर्म के लिए, कि धर्म के लिए धन कमावे, उस धन इकट्ठा करे, फिर दान देंगे और उपकार करेंगे, तो कहते हैं धर्मार्थम यस्य वित्तेह, वित्त के धन की चेष्टा धर्म के लिए की जाए तो वो जरूरत नहीं है, वरन से निरी था उसी चेष्टा न करे, है दूसरे काम करे, अधिक धन हो तो अधिक करे, ये लोभ न करे। क्यों? कि प्रश्नादि पंकज से दूरादर्श प्रश्न वरम, गली में चल रहे हैं, नाली खराब है, कैदा कायदा है, पेशाब आदि भरे है, तो उससे थोड़ा कपड़ा सान ले, हमारे घर कल चलती है उसमें लगा ले, कल में धो लेंगे। तो छटाक भर कादा लगा हुआ, क्या छटाक भर पानी से साफ हो जाएगा? शेरों लगाने पर भी उसका कुछ न कुछ अंश रह जाएगा। इस तरह से धन कमाने में जितने दोष होते हैं, वे दोष भी सब धन खर्च कर दो तो वो झूठ कपट बेईमानी का कमाया हुआ धन, उसका जो मैल है पूरा का पूरा धन दान में दे दो तो भी वो पूरा कादा नहीं छुपेगा। तो वरम से निरीयता प्रक्षालनादि पंकज से दूरादर्श प्रश्नम वरम, कादा लगाकर धोने की अपेक्षा कादा न लगाना बड़ा अच्छा है। तो झूठ कपट आदि से धन न कमाना, नीति से अपने नियम से धन कमाना बड़ा बढ़िया है। एक गांव में, शहर में एक ब्राह्मण रहते थे, हमने कथा सुनी है, तो वो रहते थे बड़े त्याग से, बड़े वैराग्य से रहते थे, साधारण स्थिति से, तो उनकी प्रसिद्धि थी, वो प्रतिग्रहे संकुचता गृहस्थास्ते ब्राह्मणास्तारी तुम समर्था, ये शांतदान्ता श्रुतिपूर्ण करना जितेन्द्रिया बुद्धिमता वरिष्ठा, प्रतिग्रहे संकुचता गृहस्थास्ते ब्राह्मणास्तारी तुम समर्था। मन वश में, इंद्रियन के वश में है, शास्त्रों का बोध भरा हुआ है, भीतर में शास्त्रों का ज्ञान है, और दान लेने में हाथ संकोच करता, किसी का ही हाथ ऐसा पसारने का मन नहीं करता, वे ब्राह्मण दुनिया का उद्धार करने की में समर्थ होते हैं, क्योंकि संयम से रहते हैं तो दूसरों का लेने से उद्धार करते हो, ऐसे वो ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। तो ब्राह्मणी के मन में जैसे सुदामा जी के लिए आया धर्म पत्नी का भाव, ऐसे हुआ कि आप राजा से मिले आओ, हमारे यहाँ के राजा है, बड़े धर्मात्मा है, बड़े पुण्यात्मा है, बड़ी नीति से चलते हैं और प्रजा का पुत्रवत पालन करते हैं, उनसे आप मिले आओ। ब्राह्मण कहता है प्रिय मैं राजा के पास नहीं जाऊंगा, मेरे को जरूरत क्या है, अपने जो मिलता है उसे निर्वाह हो जाता है, कि महाराज आप जाओ तो वो बहुत धन देंगे, कि मेरे धन की इच्छा नहीं है। अब ज्यादा रोजा नहीं कहते 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 उसकी मनोवा, अच्छा भाई ये कहती हो तो वो यावे। प्रसिद्ध संत थे वो, ब्राह्मण गृहस्थ होते हुए भी बड़े त्याग से रहते थे, तो वे गए तो राजा ने बड़ा आदर किया और पूजन किया, आदर किया, चंदन चढ़ाए, पुष्प लाए, माला पहनाई और कहा कि महाराज आप एक बार फिर आइए, आज आप पधारे हो तो मेरे पास आपके लिए देने लायक पैसा नहीं है, मेरा इतना शुद्ध पैसा नहीं है जो आपको मैं दूं, इस वास्ते एक बार कृपा जरूर और करें, आप जरूर पधारे। ये अच्छी बात, ब्राह्मण चले गए, पूजन कर दिया, नारियल दे दिया, पूजन कर दिया। ब्राह्मण ने देखा कि धन खूब लाएंगे, ब्राह्मण ने बोला क्या लाए, कहते मेरे को फिर बुलाया कि फिर आना, ऐसा बुलाया है, अब और कुछ नहीं दिया, पूजन कर दिया, नारियल दे दिया, आगे बस दिया। ब्राह्मण ने देखा कि अभी बुलाया तो जाने से बहुत मिलेगा, तो अब जाओ कहते ठहर जाओ। तो महाराज ने क्या देखा, राजा जी ने कभी ऐसे पवित्र ब्राह्मण त्याग विराग से रहते हैं, इनको अपने अच्छा पैसा देना है। तो रात्रि में गरीब का वेश धारण करके, ठंडी पड़ रही थी, उसमें घूम रहे थे, देखते थे कहीं, तो ये कड़ा बनाने वाले लोहार रात्रि में काम करते हैं, क्योंकि ठंडी पड़ती है, उसमें मेहनत होती है, आग के पास जाना होता है तो सीकम लगता है, काम पड़ता है अच्छा, तो वो कड़ा बना रहे थे। तो राजा जी पहुंचे, भाई हमारे से कुछ काम लोगे, कहते ये घन मारो आप, यहाँ पर जो लोहा बनता है उसे मारो, तुम्हारे पैसा देंगे। कहते कितने पैसे, महाराज घंटा के 4 पैसे दे देंगे आपको। वो 4 पैसे उस समय बहुत मूल्यवान होते थे, तो उन्होंने घन मारे जोर से, बढ़िया रुचि से, क्योंकि उनको तो पैसा खड़ा लेना था, आलस्य भी तो था नहीं। तो कुंवर वो लोहार खुश हो गया, वो 5 पैसे देने लगा कि नहीं मैं तो 4 ही लूंगा, कि तुमने काम बहुत अच्छा किया। अब मेरे राजा जी थे, हाथ में फाला हो गए, पीड़ा हो गई। अब वो गए वेश देख रहे घर पर अपने स्थान गए, 4 पैसे 5 पैसे 4 पैसे ले गए थे। अब महाराज को बुलाए, बुलाए तो बड़ी पूजन किया, बड़ा आदर सत्कार किया, चंदन चढ़ाया, पुष्प चढ़ाए, माला पहने और 4 पैसे भेज किए कि महाराज ये आप बहुत अच्छा सती देवर संतोषी पावे जारी वासना 3 लोक में जावे। ब्राह्मण बड़े खुश हुए, 4 पैसे हो गई। तो वे आए तो ब्राह्मण ने पूछा, हर तो तिल लगा है, माला पहनी है, क्या माल लाया है, भोजन बना, भोजन करेंगे फिर देंगे। उनकी बहुत उत्साह मन में लगा कि आज खूब लाए हैं, राजन ने निमंत्रण देकर बुलाए हैं तो माल खूब लाए हैं। तो पीछे बैठे तो उसने 4 पैसे दिए दिए, बड़ा फेंक दिए, रात हो गई तो फेंक दिया बाहर। क्या तो राजा ने दिया और क्या आपने लिया, कि देना ये राजा का, 4 पैसे दिए आपने और आपने 4 पैसे ही ले लिए, क्या दिया क्या लिया है। तो भाई राजा ने खुश होकर दिया, वो हमें सात्विक तो दातव्य में दानम दिए न उपकारी ने, देश काले से पत्र से श्रद्धालु सात्विक, वो सात्विक दान है। तो महाराज सुबह देखते तो 4 पैसों के ऊपर 4 सोने की ऐसी शाखाएं हो गई। कहता है कि अच्छा दिया हुआ दान उग जाता है, जो उग गया हुआ दान होती, अब उम्र काटो बेचो करो, वो 4 पैसे बहुत धन हो गया। तो सच्चे भाव का सच्चा पैसा देना जाए और सच्चाई लेने वाला हो तो बहुत वृद्धि होती है। तो राजा जी ने विचार किया, ऐसे त्यागी ब्राह्मण को पैसा दिया जाए तो राज का पैसा धन अच्छा नहीं है, पवित्र नहीं है, तो अपनी खरी कमाई का पैसा दिया। तो उससे महाराज जीवन का भी सब गई, दुनिया का कल्याण होता है। ऐसे अपने धर्म का पालन करने वाले भाई बहन धर्म पूर्वक कमाते हैं और ऐसे पात्र समझ कर देते हैं तो उसका दान बहुत विशेष होता है। इस वास्ते धन धर्म के लिए, धन की इच्छा नहीं करनी चाहिए कि हमारे धन हो तो अधिक करेंगे, अरे अधिक भगवान के यहाँ धन के अधिक और कम नहीं है, उसमें जो थोड़ा करोगे बहुत हो जाएगा, और धन ज्यादा हो जाएगा तो बहुत देने पर थोड़ा हो जाएगा।